116 से 120वीं गाथा तक में चर्चा हुई और उसके बाद में जो कलश आया था उस पर भी चर्चा हुई। अब समयसार गाथा 131 से लेकर 125 तक की गाथाओं पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा इसलिए अत्यंत सहज और सरल हो गई अपन को कि जैसा अपन पिछली 5 गाथाओं में सिद्ध करके आए हैं कि पुद्गल के परिणमन का कर्ता पुद्गल ही है, विकारी और अविकारी सभी। अविकारी की तो कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि पुद्गल का एक परमाणु ही अविकारी है, वो भी जब एक अकेला परमाणु रहेगा तो उसमें भी तो परिणमन तो होगा ही ना, तो उसे बोलेंगे स्वभाव परिणमन। और जब वो स्कंद रूप परिणमन करता है तो उसे बोलते हैं विभाव परिणमन। तो पुद्गल में जो कारमान वर्गणाएं हैं वो स्वयं ही स्कंद हैं, और फिर वो जो कर्म रूप परिणमित होती हैं और आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होती हैं तो वो भी विभाव ही होगा ना। ये विभाव परिणमन की बात है, इस चर्चा विभाव परिणमन का, वो जो परिणमित होता है तो उस परिणमन का कर्ता कौन है। तो जिस तरह से पुद्गल पर सिद्ध किया था, जो जो तर्क और युक्तियां वहां पुद्गल के बारे में दी थी वे सभी यहां पर भी घटित कर लेना। 2 दफे चर्चा तो वहां हो चुकी है, 1 दफे गाथाओं के अर्थ में, टीका के अर्थ में, और फिर द्वारा वो कलश के बाद। तो अब जो अपन चर्चा करेंगे ऐसा लगता है पृष्ठ पेषण हो, लेकिन अब आचार्यों ने कंजूसी नहीं की तो अपन कंजूसी क्यों करें। आचार्यों को ये आलस नहीं हुआ कि हम पिछली 5 गाथाओं में इस तरह से कह चुके हैं, तो अब कहते ऐसा ही जीव पर घटित कर लेना, इससे भी काम चल सकता था। ये 5 गाथाएं नहीं लिखी जाती तो भी संभव ठीक था, लेकिन आचार्य देव ने कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने स्वयं ही वैसी की वैसी 5 गाथाएं लिखी, अमृतचंद ने भी 1 अक्षर कम नहीं किया। आप मिलाएंगे तो बिल्कुल हूबहू दोहरा दिया, सिर्फ इतना फर्क पड़ा तो वहां जहां पुद्गल लिखा था यहां उसने जीव लिखा होगा, तो यहां जहां वहां जहां जीव लिखा था यहां वहां पुद्गल होगा, बस बदल गया मामला। और कलश में भी वही बातें कही हैं, तो 3 दफे फिर कहने का मौका है। 1 गाथाओं के अर्थ करते समय, 1 उसकी टीका पढ़ते समय, और 1 उसमें कलश पढ़ते समय। आचार्यों ने तो कुछ भी कंजूसी नहीं की, लेकिन अपन थोड़ी कंजूसी करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने 4-5 दिन उनमें लगाए हैं, इनमें 4-5 दिन नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि 1 दिन में ही खत्म कर दें, नहीं हो तो 2 में कर दें, समझ है ना। लेकिन इसे जरा थोड़ी रफ्तार आगे बढ़ाएंगे इस दृष्टि से कि आप लोगों ने वो काफी उसे पढ़ा है और घर पर भी पढ़ के ही आए होंगे। अब 116 से 120वीं गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गलों के बारे में कही गई है वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में भी कही जा रही है, जो इस प्रकार है। गाथाएं पढ़ें। ना संयम बद्धो कम्मे देखो इसमें भी सांख्य मत की चर्चा आई, लेकिन जिस अच्छी तरह से यहाँ घटित होती है पिछली गाथाओं में तरह दोनों में, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सांख्य मत में जो 25 तत्व कहे हैं वो मूल में दो तत्व कहे हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, और प्रकृति के फिर 24 भेद हैं। भाग्य से अपने यहां भी चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं, उनके यहां भी पुरुष, वो पुरुष जो, और उनके यहां प्रकृति नाम का जो दूसरा तत्व है भी, वो पुद्गल जो है ना ज्ञानावरणादि कारमान वर्णाई को लिया है ना, तो उसे भी अपन प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बंध बोलते हैं ना। मूल में 8 प्रकृतियां हैं और उत्तर में 148 प्रकृतियां हैं, और गोमट सार में जो अधिकार है उसका नाम ही प्रकृति समूह कीर्तन अधिकार है ना। अब प्रकृतियों का कीर्तन करते हैं, अब मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या समझते हैं कि भगवान का कि हम भक्ति करते हैं। चर्चा है कीर्तन माने भक्ति, भक्ति है ही नहीं। यहाँ पीछे भी एक आया था कीर्तते, अब यहाँ आ गया ना, उसका अधिकार का नाम ही है प्रकृति सम्मुख कीर्तन अधिकार। उसे अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं माने उस बात को विस्तार से रिपीट कर करके बार बार हम उसको समझाते हैं। तो यहाँ अपने यहाँ भी 8 प्रकृतियां हैं, ऐसे ही प्रकृति के वहां 24 भेद हो जाते हैं। खैर मतलब इस तरह से जो शब्दावली है वो लगभग एक सी है। अब अंतर क्या है, उनके यहां पुरुष माने आत्मा को पूर्णता अपना और पर का दोनों कही, अपने यहां भी अकर्ता की बात है आत्मा की, लेकिन मूलता तो पर के बारे में है और विकार के बारे में भी है कदाचित। यहां तो विकार का कर्ता सिद्ध किया है इन गाथाओं में, अभी विविका में भी, तो उनका कर्ता है, तो कर्ता है उनसे अभिन्न है, उन्हीं रूप है, एकत्व मत तो सब बताया है इसमें है, अभी निकलेगा। तो वो अपन रागादिक, लेकिन वो पूरी तरह पर का और अपना, अपने निर्मल प्रणमन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो करता तो वो ही है लेकिन फेरफार नहीं करता, खत्म नहीं कर सकता, बोलने में जरा पराधीनता लगती है, इसलिए भाषा सही यही है कि अपने प्रणमन में भी फेरफार नहीं करता। आप टाइम टेबल बना के लाए शांति जी, और मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया इसमें, और फिर मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, मैं जो एक दफे बना दूंगा फिर कोई उसे परिवर्तन नहीं कर सकता है, इन दोनों में फर्क है ना। क्यों, यदि मुझे उचित लगता है कि वो ठीक नहीं है, थोड़ा बदलना है तो बदल सकता था ना, ऐसा लगता है कि उसमें जरा मेरा अधिकार छिन गया और मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें ऐसा लगा कि मेरे पूरा अधिकार तो था लेकिन इतना अच्छा बना है कि मुझे उस परिवर्तन में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। तो ये भगवान आत्मा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, भाषा तो सही यही है, फिर भी हमको उसमें पूरा आत्मा की ताकत मालूम नहीं पड़ सकती है। जैसे वो कर सकता होता तो कर देता, लेकिन वो कर ही नहीं सकता, वो कहते हैं करता नहीं है और कर सकता नहीं है का अध्यात्म में एक ही अर्थ होता है। तुमको ऐसा लगता है कि मुझे कर सकने का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को तोड़ने के लिए हम ये कहते हैं कि वो कर ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा जाता था कि फिर ग्रस्तों को, सम्य दृष्टि ग्रस्तों को भी भगवान की भक्ति पूजा पाठ तीर्थ यात्रा दान ಇದು ಅವಶ್ಯ ಕಮೆ ಕರ್ಮೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಯಮಸ್ತಪ ದಾನಂ ಚೇತಿ ಗ್ರಸ್ತಾಣಾಂ ದಿನೇ ದಿನೇ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಅನ್ನಾ ಜೀ ಯಾಂ ಭೀ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪನ ನಿಯಮ ಸಾರ ಮೇ ಆಯಾ ಥಾ ನಾ ವಹಾ ಗುರುದೇವ ನೇ ವಹಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀ ಅರ್ಥ ಕಿಯಾ ಥಾ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಯೋ ಲಿಖ ದಿಯಾ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಥಾ ಯಹಾಂ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾ ಅರ್ಥ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ. ತೋ ಈ ಛೇ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮ ತೋ ಉಸೆ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಂಗೆ ನಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ನಾ. ಜಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುದೇವ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಕಹತೆ ಥೇ ಗುರುದೇವ್ ಕಹತೆ ಥೇ ಹಾ ಜ್ಞಾನಿ ಕೀ ಚೌಥೆ ಪಾಂಚವೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಕೀ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಭಾವ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಭಾವ ಆಯೆ ಬಿನಾ ರಹತಾ ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಉನ್ಕಾ ಏಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಯೇ ಜವಾಬ್ ಥಾ. ತುಮ ಏಕ ಲಾಖ ಬಾರ ಪೂಛ ಲೋ ಕ್ಯಾ ಆಯೆ ಬಿನಾ ರಹತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಆಪ ಮಾನತೆ ಹೋ ಕಿ ವೋ ಕರ್ತಾ ಹಾ ಕರ್ತಾ ಆಯೆ ಬಿನಾ ರಹತಾ ನಹೀ ಹೈ ಮಾನತೆ ಹೈ. ತೋ ಫಿರ್ ಕಹನೆ ಕ್ಯೋ ನಹೀ ಕಹ ರಹೇ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಐಸಾ ಕಹನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ತುಮಹಾರಾ. ಔರ್ ಉದ್ಯಮ ಸಿಸ್ಟ್ ಹೋ ತೋ ಐಸಾ ಭೀ ಕಹ ಸಕತಾ ಹೈ ಕಿ ತುಮಹಾರೇ ಬಾಪ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಐಸೀ ಹಿಮ್ಮತ್ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಕಿಸಿ ಕಿ ಥೀ ನಹೀ. तो वो ये कहते थे वो करता है ये बात सत्य है फिर भी मैं नहीं कहूंगा. क्यों? क्योंकि तुम जिस कारण से कहलवाना चाहते हो उसी कारण से मैं नहीं कहूंगा. मैं यही कहूंगा कि भाव आए बिना रहता नहीं. तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इसका उपदेश दो ಲೋಕೋ ಕೋ ಕಹೋ ಕಿ ತುಮೇ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಬಾಧ್ಯ ಕರೋ ಕ್ಯಾ ವೋ ಕಹತೆ ಹೇ ಜೊ ತುಮ ಚಾಹತೆ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ನಹೀ ಹೈ ಜ್ಞಾನಿ ಕೋ. ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಭಾವ ಆಯೆ ಬಿನಾ ರಹತೆ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಬಾತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಕ್ಕಿ ಹೈ. ವೋ ಕರ್ತಾ ಹೀ ಹೈ ತೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಕ್ಯಾ ಲಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ये हमें सुना है कि देखो सब विद्यार्थियों को समय पे आना चाहिए, समय पे पूजा भक्ति में जाना चाहिए, एक क्लास में समय के पहले आ जाना चाहिए. ये चाहिए चाहिए कि क्या जरूरत है? यही बोलो ना, हमारे सब विद्यार्थी बिल्कुल समय पर पहले उपस्थित हो जाते हैं. गुरुदेव के मामले में यही बोलते ना कि जब गुरुदेव श्री प्रवचन करने बैठते थे तो 99% श्रोता उनके सामने पहले से ही उपस्थित रहते थे. इक्का दुक्का कभी आ जाए बाद में तो अलग बात है. रहना पड़ता था, उन्हें रहना चाहिए कि भाषा की जरूरत ही कहां है, रहते ही थे कि नहीं. जब वे बिल्कुल समय पे आते, वे 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे. शांति जी मालूम है आपको, 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे और शांति से वही स्वाध्याय करते रहते थे. वो घड़ी की नोक पे जब तक उनका समय नहीं हो जाए, जैसे मान लो 8 से 9 सवा 8 से होता था, सवा 8 नहीं बज जाए तो वो मुंह से शब्द नहीं निकालते थे. और उसके पहले श्रोता आके लगभग बैठ जाते थे और चुपचाप वे भी पढ़ते रहते थे. एक स्थिति थी, उससे क्या फायदा? 15 मिनट खराब करने से क्या फायदा? क्यों? यहां तो आगे बैठ के खराब करेंगे, वो बाहर क्या होगा? अरे वे भी उसे पढ़ते थे, यद्यपि उनका 25वें दफे का पढ़ा पढ़ाया होता था, फिर भी तत्काल भी एक दफे आगे पीछे पढ़ लेते थे. और उनके श्रोता भी, मैं तो खासकर 3-4 गाथाएं पीछे से और 3-4 गाथाएं आगे तक इतना उनसे निगाह डाल लेता था कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्या आ रही है, कहां से बाद में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले कौन सी गाथा है, बाद में कौन सा है. इसलिए भाई यहां 2-4 गाथाएं बाद में भी चलाया करें, यहीं पे खत्म नहीं कर दिया करें. भले कटौती करना हो तो पीछे से कर लेना. तो आगे क्या आने वाला है वो भी हमारे उपयोग में आना चाहिए. उसी क्रम में पद्धतियां आती ना, पांच सात गाथाएं पहले से जहां से प्रकरण शुरू हुआ हो, दो चार गाथाएं जहां तक वो प्रकरण चल रहा है वहां तक, इसी प्रकार कलशों में, तो हमारा वो कंटिन्यूशन बनना रहता है। तो यहां ये कहते हैं कि वो नहीं, जिस कारण से तुम ये कहलाना चाहते हो उसी कारण से मैंने तुम्हारे उस अज्ञान का पोषण में नहीं करना चाहता। तो उस वक्त मुझे खूब याद है, सारे देश में इसकी आलोचना करते वक्त टोडामल जी को पेश किया जाता था, और पेज नंबर मोक्षमा प्रकाशक का 226 जिसमें ये लिखा है कि जब तक स्थिति न आए तब तक इन शुभ भावों रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा में तो ये ही मानो कि ये बंध के कारण है, हे ही है। तो इस बात की आधा पंक्ति को छोड़कर देखो, प्रवर्तन करो लिखा है ना, टोडामल जी तो करो लिखते हैं, और तुम करो क्यों नहीं बोलते, क्यों? ये सब लोग कहा करते थे, देखो टोडामल जी ने क्लियर शब्दों में लिखा है, प्रवर्तन करो, लेकिन आगे क्या लिखा, किंतु श्रद्धा में उसे हे ही मानो, साथ में ऐसा भी तो कह देते थे। और दूसरी बात यह है कि टोडामल जी के श्रोता इतने बुद्धिमान होंगे कि उनसे करो कह देने से वे उसे उपादेय नहीं मान लेंगे, मुक्ति के मार्ग का कारण नहीं मान लेंगे, और हमारे श्रोता हमें इतने नहीं दिखते हैं, गुरुदेव श्री कहते थे, इसलिए हम गलती से भी वो शब्द नहीं बोलेंगे कि वो यही कहेंगे कि उसे सारे भाव आए बिना रहते नहीं है, भूमिका अनुसार आते ही हैं। यदि अनिवार्य कर देते शांति जी तो क्या दिक्कत होती, तो कदाचित कोई ज्ञानी, जो शास्त्रों में जिन ज्ञानियों का वर्णन है उनकी बात करता हूं, उन प्रवृत्तियों में कहीं कभी करते दिखाई नहीं देते तो ये अज्ञानी जीव उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते, क्या बनारसीदास जी जैसे लोगों को यह चिंता हुई तो उन्होंने लिखा कि हे भगवान, तेरी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा ही समाई रहती है, कैसे कि कभी मैं तुम्हारी वाणी का अध्ययन करता हूं, कभी उसी को लिपिबद्ध करता हूं, कभी उसका पाठ करता हूं, कभी उसको गुनगुनाता हूं, कभी उसके बारे में सोचता हूं, ऐसे दिन भर की क्रियाएं गिनाई उनने, और कहा इस तरह से वो एक मिनट भी मेरे हृदय में से तुम्हारी भक्ति हटती नहीं, अकेला इस थाली का माल उस थाली में पहुंचाने का नाम ही भक्ति नहीं है, क्या ये सारे स्वरूप भक्ति के हैं, उन्हें ये बताना पड़ा। अब यहां पर जो अपन चर्चा करना है कि सांख के समान, तो मैंने कहा यहां वो ज्यादा सही बैठता है, वहां कम, क्योंकि उनके यहां उसको बिल्कुल सर्वथा अकर्ता माना है। यदि ऐसा मानोगे कि आत्मा रागादि भावों को करता नहीं है सर्वथा, तो सांख्य ऐसा मानता है, वो कहते हैं उसे गुस्सा आता ना आत्मा को, तो ये प्रकृति का अपराध है, उसने उसे गुस्सा कराया है। तो जो सांख्य मताने आई शिष्य हैं जैनियों में, कुंड कुंड के शिष्यों में, वे भी अपने सारे विकारी भावों के अपराध को कर्म के माथे में मरकर छुट्टी लेना चाहते हैं। तो क्रोध कर्म का उदय हुआ तो बोलता है ऐसे ही जैनियों के हो जाएगा। अब वहां इतनी सशक्त बात क्यों नहीं है पिछली गाथाओं में, क्योंकि वहां पुद्गल जीव का करता है नहीं है, पुद्गल अपने प्रणवन का करता है, जीव नहीं कराता है ये बताना है, पर सांख्य तो ऐसा मानता नहीं है। कि प्रकृति को पुरुष कर आता है, लेकिन वहां पर क्यों किया? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कराता है, इस अर्थ में वहां ग्रहण करना है। दादा समझ जाएंगे नहीं अंतर क्या है? यहां तो सीधे आत्मा की बात है, और वहां चूंकि जीव अन्न द्रव्य है और पुद्गल अन्न है, तो जीव नहीं कराता पुद्गल रूपण में, ये बताना है। तो संख तो ऐसा मानता नहीं है, तो उसलिए उन्होंने वहां कहा, कह दिया मैं जीव को परिणमाता नहीं है, क्या उन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमाता, इस अर्थ में समझ लिया। अब देखिए दूसरी बात, यदि स्वयं ही ना बंधे अर क्रोध आदि मय परिणत न हो, यह आत्मा अविकारी परिणामों की बात है, भाव बंध से स्वयं ही ना बंधे और क्रोध आदि भावों रूप परिणमित ना हो, तो अपरनामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। तो जीव सांख्यों जैसा तेरे मत में अपरनामी सिद्ध हो जाएगा, क्यों? तो अपने निर्मल परिणामों को करेगा क्यों? तो वो बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हें यहां समझो। तो अपरनामी सिद्ध होगा, देखा ना, जीव तेरे मत विषय, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी मान्यता में ऐसी गलती हो जाएगी। स्वयं ही क्रोध आदि में यदि जीव ना हो परिणमित, तो सिद्ध होगा सांख्य मत और संसार की हो नास्ती। क्यों? कि फिर जीव स्वयं नहीं परिणमित होगा और कर्म तो परिणमा नहीं सकता, तो जीव और कर्म का संयोग ही नहीं होगा, तो संसार ही नहीं होगा जीव में। यदि परिणमावे कर्म जड़, वो कहता कैसे हुई जड़ कर्म परिणमा देगा उसे, तो संसार तो खड़ा हो ही जाएगा ना। यदि परिणमावे कर्म जड़ क्रोध आदि में इस जीव को, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को, जब वो अपरिणामी वस्तु है तो अपरिणामी को कैसे परिणमा देगा? परिणामी वस्तु को परिणमाने की बात तो दुनिया में आती है, अपरिणामी को परिणमाने की बात नहीं आती है। सोनगढ़ में पंच कल्याणक था और उसमें मेरा प्रवचन चलता था, शाम को भाग से गुरुदेव सिंह ने रोजाना मेला ही रखा था, बहुत विद्वान थे वहां मौजूद, मुंशुओं में भी और गैर मुंशुओं में, फूलचंद जी और कैलाश चंद जी, जगनमोहन लाल जी, लालचंद भाई बाबू सब थे, विमल जी, ये मेरा रखा था रोजाना शाम को। तो वहां मैंने ये बात कही कि आत्मा परिणामी नहीं है, कि परिणाम दृष्टि के विषय की बात चलती थी, तो उसे परिणामी कहना ये तो पर्याय के साथ अभेद की बात है। तो पर्याय तो आत्मा से अभेद है ही नहीं दृष्टि के विषय में, इसलिए उसे परिणामी द्रव्य करना कहना ठीक है, कर्ता परिणामी द्रव्य है ना, परिणामी द्रव्य तो कर्ता होता है, तो फिर क्या कहें? बोलो आप सोचो कि अपरिणामी कहें। तो मैंने कहा कि उसे अपरिणामी कहना भी सही नहीं है पूरी तरह, कि क्यों? क्योंकि ये भी पर्याय की तरफ से ही कथन हुआ। कैसे हुआ कैलाश जी? क्योंकि पर्याय का निषेध कर रहे हैं ना, तो पर्याय तुम्हारे दिमाग में से हटी कहां है? ये अपरिणामी जो नाम रखा तुमने, वो उसको पर्याय के निषेध की तरफ से उसका नाम रखा। जैसे किसी आदमी को पति कहना तो पत्नी की अपेक्षा होता है ना, पिता कहना पुत्र की अपेक्षा होता है ना, पुत्र कहना पिता की अपेक्षा होता है ना, तो अपरिणामी भी पर्याय की तरफ से बात की। तो साहब बहुत लोगों को प्रसन्नता हुई, लालचंद भाई ने मेरी पीठ ठोकी आगे प्रवचन के बाद में, क्यों? वाह के पंडित जी, मैं यही सोच रहा था कि आप कहां तक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि आपको ये बात भी ख्याल में है और आप यहां तक जाएंगे। आज मेरे ये ख्याल में बात आई है, वही पंचकर्ण की बात है सोनगढ़ के, जो हुआ था 74 में हुआ था ना महावीर भगवान का, तो ये अपर्णा में लिखा ना, कहां लिखा है अपन क्या पढ़ रहे थे, स्वयं ही क्रोध आदि में जब जीव ना हो परिणमित तो सिद्ध होगा सांख्यमत संसार की हो नास्ती, यदि परिणमावे कर्म जड़। क्रोध आदि में इस जीव को पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को, यदि सर्वथा परिणामी मानोगे तो परिणमा नहीं सकता है। अब इस प्रकरण में यहां तो क्रोध आदि का कर्ता कहा जा रहा है, क्रोध आदि से अभिन्न कहा जा रहा है। अब तो हर गाथा उठाओ और वो दृष्टि का विषय लेके बैठ जाओ और इसकी बात ही नहीं करो तो ये कहां का न्याय है बोलो है? यदि स्वयं ही क्रोध आदि में परिणमित हो यह आत्मा, यदि क्रोध आदि रूप स्वयं परिणमित होता है, यद्यपि यही बात यहां सिद्ध कर रहे हैं लेकिन तर्क दे रहे हैं कि मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे कर्म जड़, तो जड़ कर्मों ने परिणमाया है ये बात झूठी रही, माने वो परिणमित है रागादि रूप और स्वयं ही परिणमित हुआ है। विकार का कर्ता भी मैं भी वो पूरी तरह से आजाद है, गुरुदेव के प्रचन में बहुत आती है ये बात, कर्म ने ये कराया कर्म ने ये कराया ये बात नहीं आई है। और अंत में निर्णय क्या देते हैं मालूम, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, और मायोपयोगी माया है, और लोभोपयोगी लोभ है। क्या कह रहे, क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध ही है, क्रोध ही नहीं क्रोध, क्रोध से अभिन्न नहीं, क्रोध से का स्वामी नहीं, क्रोध का कर्ता नहीं, क्रोध का भोक्ता नहीं, ये तो है ही सब। इनमें भी भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट नजर आती है, क्योंकि कर्ता कर्म की बात कही ना तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा कि जीव है कर्ता और क्रोध है कर्म, तो भेद से कथन हुआ ना तो व्यवहार नहीं खड़ा हो जाएगा। तो जीव क्या है, क्रोध है, बोलो। ये तो कई जगह है कि जीव ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से परिणमित जीव सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान से परिणमित जीव सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही नहीं दादा, सम्यक चार्य से परिणमित जीव सम्यक चारित्र है, ये अभेद हुआ। अब ये कहते क्रोधादि परिणाम से, जब मैं सम्य शिखर में ये बात आई थी कि जब मैं ये समझा रहा था तो एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा ये तो प्रवचन सार की बात है, इसलिए मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी भी कुछ लोग कहते होंगे कि इस समय सार की बात है कि नहीं, देखो क्रोधोपयोगी जो मैंने कब क्या कहा था शांति जी, कि वो गाथाएं हैं ना 7, 8, 9, 10, 11 प्रवचन सार की, उसमें लिखा है शुद्धोपयोग जुत्तो शुद्धा, शुभोपयोग जुत्तो शुभा, और अशुभोपयोग जुत्तो अशुभा। ये भगवान आत्मा शुद्धोपयोग से युक्त हो तो शुभ है शुद्ध है, और अशुभोपयोग से युक्त हो तो अशुभ है, और शुभोपयोग से युक्त हो तो शुभ है, ऐसा। तो ये प्रवचन सार की बात है, लेकिन ये समय सार में भी वही बात कही ना, ये कहा था कितनी, लोक व्यवहार में तो यहां तक कहा जाता है कोई आदमी क्रोधी हो ना तो लोग कहते भैया उससे बात मत करना, बोलो आग रखा आग है आग, तो आग बोलते हैं उसे, क्रोध नहीं क्या समझ गए ना, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को, क्रोध को अग्नि कहा जाता ना, साम्य रूप क्या, साम्य रूपम जलम नो चेत क्रोधाग्नि केन साम्यति, यदि समता रूपी जल नहीं होता तो क्रोधाग्नि को कैसे हम शांत करते। अब इन 10 गाथाओं में ये सिद्ध कर रहे हैं, यानी अंतिम जो गाथाएं निष्कर्ष की हैं, ये पुद्गल का, पुद्गल का प्रणमन पुद्गल है, अब समझ आए ना, ये पुस्तक क्या है बोलो, बोलो क्या है ये पुस्तक, क्या है? पुद्गल के पुद्गल की पर्याय, स्कंद तो पर्याय होती है, लेकिन इसे कौन बोलता है कि पुद्गल की पर्याय है, बोलो कैलाश जी, पुद्गल बोलते ना, इसका मतलब द्रव्य और पर्याय को अभेद मान के बात कर रहे हैं ना, और विकारी पर्याय से अभेद कर रहे पार्नी जी। ऐसे बहुत कथन शास्त्र में हैं और अपन तो बोलते ही हैं, पुद्गल की पर्याय को पुद्गल कहते हैं, इसको वहां यहां जब पुद्गल कहा तो हमारी दृष्टि में हमने पुस्तक को पूछा है, परमाणु को नहीं पूछा है ना, इसे हम पुद्गल कहते हैं ना। ऐसे ही कहते क्रोध पर्याय से तन्मय, ये तन्मय का ये है, तन्मय माने उस रूप, मैंने कहा बहुत गड़बड़ होती है, तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता भी होता है, तो हर जगह उसे हम उपयोग की एकाग्रता में समझ लेते हैं, और उस रूप कि मैं उस रूप नहीं हूं, मैं इससे तन्मय हूं, मैं उस रूप नहीं हूं, ये तो श्रद्धा की बात है, ये लब्धि ज्ञान में रहेगा, उससे उसका काम हो जाता है, जब तो कहने की जरूरत पड़ती है तब कहते हैं। ऐसे ही फिर एक बार कहता हूं कि द्रव्य लिंग अकेले नग्न दशा का नाम नहीं है, जो छठवें गुणस्थान और के योग्य स्वभाव हैं वो भी द्रव्य लिंग में ही जाते हैं, और जो शुद्ध परिणति है और शुद्धोपयोग है वो भाव लिंग में जाता है। ये भेद करो परिणति और उपयोग का, शुभ भाव ये जाएगा द्रव्य लिंग में, और शुद्ध परिणति ये जाएगी भाव लिंग में और छठवें गुणस्थान में, दोनों एक साथ है, उपयोग में शुभ परिणाम है क्या, और परिणति में शुद्धता है तीन कषाय के अभाव रूप, कह रहे हैं ना, तो उस तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धता है वो भाव लिंग में जाएगी, और जो सुवराग है वो द्रव्य लिंग में जाएगा, है ना, अकेली नग्नता नहीं, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन, और अतिचार सहित हो चाहे रहित हो, सहित भी चलेगा, माने जिनवाणी में जितनी आज्ञा है, अतिचार से वो दशा खंडित नहीं होती, जब दशा खंडित होती है उसे अनाचार कहते हैं, इसलिए अभी तो 28 मूलों की बात नहीं है, अभी तो उसमें अतिचार तो क्या, अनाचार का भी बाप है, ख्याल में है ना, मौजूद है, इसलिए वहां तो ना द्रव्य लेंगे ना भाव लेंगे ना कोई, मैं तो बहुत शांति और प्रेम से कहते हैं कि आप सबको द्रव्य लेंगे समझते हैं कि भाई साहब नहीं समझते हैं, हम समय सार पर हाथ रख के कसम खा करके कह सकते हैं कि ना हम उन्हें द्रव्य लिंगी समझते हैं क्या, क्योंकि टोडामल जी ने हमें आज्ञा दी है कि द्रव्य लिंगी के लिए उन्हें निषेध नहीं किया, क्योंकि वो व्यवहार है और नमस्कार करना भी व्यवहार है, ऐसा लिखा है क्लियर शब्दों में। हाँ, गाथाओं का अर्थ समझना, अब मुद्दे की बात यह है, इसका अपन को अर्थ जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने अच्छी तरह से कहा है, आत्मख्याति थोड़ा है, और इसमें दो तीन बातें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो पिछली पांच गाथाओं में आई ना, जो पुद्गल वाली उसमें नहीं है, वो अपन को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन टीका तो एक दफे पढ़ लेते हैं। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोध आदि भावों में स्वयं भी परिणमित न होता हो तो वह वस्तुतः अपरिणामी सिद्ध होगा, और ऐसा से तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा। कितना किस्मत लिखा, स्वयं न बंध कर्म से स्वयं ही बंधता, यदि जीव कर्म स्वयंता हुआ क्रोध आदि भावों से स्वयं भी परिणमित न हो, दो दफे स्वयं डाला कि एक कर्म के उदय से बंधा, इसको यहां पर उपेक्षा कर रहे हैं, निमित्त की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, इतना समझ लेना, क्योंकि अपने न्याय की परिभाषा क्या है, अनिराकृत प्रतिपक्षा, जिसने प्रतिपक्षी का निषेध नहीं किया सिर्फ उसे गौण किया है, ये बात है ना। तो जीव अपरिणामी सिद्ध होगा, तो अपरिणामी सिद्ध होगा तो एक दोष तो दे आएगा कि क्योंकि तो पर्याय है ना, और जीव में तो पर्याय है ही नहीं, कैसा वो अपने एक नए ऐसा है ना परम शुद्ध निश्चय नए कि जिससे पर्याय नहीं है उसमें, तो उससे संसार भी नहीं है भाई साहब। ये खुद लिखा जैसे ना आचार्य की 320 गाथा की टीका में कि बन्न और मोक्ष होते नहीं है सिर्फ जाने जाते हैं, ऐसा लिखा है जनाए थे। भगवान आत्मा न संसार को करता है न मोक्ष को करता है, उसके ज्ञान में तो दोनों जानने में आते हैं जनाए थे। देखो यहां भी ये करने का तो निषेध किया लेकिन मोक्ष और बंध दोनों को पर देना, उनको जानने का निषेध नहीं किया। कितनी स्पष्ट बात है बालचंद जी साहब, मैं कम से कम रोजाना आता है तत्व में से, मैं उसमें से अपनी तरफ से थोपता नहीं हूं, जो उसमें होता है उसी को निकालता हूं। आप लोग सब देखो बारीकी से कह रहा हूं वो उसमें है नहीं है। ऐसा होने से संसार भाव हो जाएगा, इससे बचने के लिए तो ये कहेगा संसार का अभाव नहीं होगा। यदि किया जाए कल कर्म जीव को क्रोध नहीं, इस तर्क से का विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को, यदि वो तुम कहते हो कर देगा तो तुम बताओ हमें कि वो परिणामी है कि अपरिणामी, उनसे याद कराएगा वो अपरिणामी को तो अपरिणामी सारा है, उसमें तो राग द्वेष होता ही नहीं, तो वो तो परिणामी आत्मा को ही कराएगा ना, है वो खुद ही परिणामी है, उसको तुम क्या परिणाम जो चलते हुए को तुम क्या चलाओगे है? स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि बस शक्ति सुता हो उसे अन्य कोई कर सकता, स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रहती। हूबहू भाषा झिली गाथाओं में भी आ गई है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है। अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव स्वयं ही हो, ऐसी स्थिति में प्रकार गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव से युक्त रूप जिसका उपयोग परिणमित ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। देखो ये क्रोधादि से क्रोध है ना उपयुक्त मान है लिखा था ना, उसका अर्थ है क्या कह रहे हैं देखो, क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है ऐसा जीव स्वयं ही क्रोध है, आदि में मान है माया है ऐसा लेना, जीव स्वयं क्रोध है, क्रोधी नहीं क्रोध है लिखा ना। अभी ये उदाहरण वहां नहीं आया था गरुड़ की भांति, क्यों नहीं आया था वहां, आ जाना चाहिए था ना, आ नहीं सकता था ना कि पुद्गल ध्यान नहीं करता है, वो तो पुद्गल की बात थी ना, पुद्गल किसी का ध्यान नहीं करता है ना, ये वो भैंसा जैसा ही उदाहरण है, कौन सा भैंसा, अपना भैंसा, भैंसा गाड़ी वालों का भैंसा नहीं, अपना भैंसा कौन सा है संसार का, इतने लंबे सींग वाला जिसके दोनों सींग लोक के अंत में जाकर अटक गए हैं, और यदि हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी, वो भैंसा। वो कहते ऐसे उसे लगने लगता है कि मैं भैंसा हूं, ऐसे ही कहते हैं एक ऐसा गरुड़। देखो ऐसी स्थिति में गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मन साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव से क्रोधादि जिसका उपयोग परिणमित हुआ वह जीव स्वयं क्रोधादि है। वो गरुड़ क्या आप जानते हैं, गरुड़ नाम का एक पक्षी होता है, तो उस सब जहर को उतारने में उसमें से ताजी, इसलिए इसको जहर उतारने में उसे गारुरी मंत्र कहा जाता है, गारुरी मंत्र है ना। तो जब वो मंत्र साधक कौन जो सांप के जहर को उतारता है ना, तो ऐसा चिंतन करना पड़ता है उसे कि मैं गरुड़ हूं, और फिर वो गरुड़ अपने में अभेद ध्यान के द्वारा वो उसे ऐसा ही लगने लगता है कि मैं गरुड़ हूं, और फिर वो जो भी क्रिया करता है तो गरुड़ आगे गरुड़ को देख पड़ जाते हैं, नहीं नहीं नस नस झीले पड़ जाते हैं। तो गरुड़ का ध्यान करने वाला गरुड़ अपने को समझ लेता है ना, अभेद हो जाता है उस गरुड़ पर्याय से, उसे लगने लगा कि मैं गरुड़ हूं, नहीं लगे तो उसे डर भी नहीं उतरे। देखो अब इसलिए दो बहुत मर्म की बातें सिद्ध हो गई, कौन कौन सी, पहली तो ये कि आदमी जिसका ध्यान करे भले ही वो सत्रूप में वैसा ना हो तो भी उसे ऐसा ही लगना लगेगा, अनुभूति में आएगा कि मैं वही हूं। भैंसा के ध्यान से भी सिद्ध हो गई और गरुड़ के ध्यान से भी, तुम गरुड़ हो तो गरुड़ जैसे, भैंसा हूं तो भैंसा हूं, फिर तुम प्रकाशित हो भगवान आत्मा हूं, इस दिनागम में से समझ के और उसके रूप अपने का ध्यान करोगे तो वहां लगने लगता है। एक तो यही बात सिद्ध हो गई, और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूं फिर कहता हूं एक बात, कि तुलसीदास जी का उदाहरण देखे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें आज राम ने भक्त दर्शन दिए, और वे कैसे दिए कि बराबर धनुष बाण हाथ में लिए थे और बिल्कुल ऐसे थे जैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने बराबर बता दिया वैसे दिए। तो मैं कहता हूं कि तुलसीदास जी सज्जन पुरुष दिए होंगे क्यों नहीं, उन्होंने इस ध्यान रूप से वे परिणमित हुए कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, और भगवान का स्वरूप तो उनके ख्याल में है, वो धनुष बाण वाला भी कहते धनुष बाण देव घात, तो उन्हें दिवा स्वप्न बोलते हैं उसे, एक तो होता रात्रि स्वप्न जो रात्रि में अपन सोते वक्त देखते हैं, और आप दिन में भी ऐसे कल्पना करके स्वप्न देखते हैं ऐसा कोई आदमी आ रहा है आ रहा आ रहा है, तो उनको निश्चित रूप से वो दिखाई दिए होंगे जो आपको बोल रहे हैं वो छल नहीं है, लेकिन इसलिए वो बात सत्य है कि राम आए होंगे वैसा भी ध्यान करके, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि नहीं आने पर भी ध्यान का ही ये विशेषता है। आप समझ रहे, दूसरी बात सिद्ध हुई। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे किसी भी आदमी से, किसी को शंकर दिख गए, किसी को राम दिख गए, किसी को मुंडी बजाते हुए किसने दिख गए, और ऐसे ही आत्मा का सही स्वरूप नहीं जानने वाले भी और आत्मा का ध्यान करें तो उन्हें आत्मा दिख गया ऐसा वे कहें तो वे भी बेईमान नहीं है, उन्हें भी ऐसा दिख गया होगा कि एकदम क्या दिखा था बताओ भैया, तुम एकदम विराट एकदम सफेद 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 क्या, तो भगवान आत्मा तो सफेद सफेद है नहीं, क्योंकि वो तो अरंग है अरूप है, लेकिन उसने जो अपनी आगम ज्ञान से प्रयुक्ति ज्ञान से अपने दिमाग में भगवान आत्मा का जैसा रूप बना रखा है उसका उसने ध्यान किया तो उसे वैसा दिख जाता है, इसलिए उनको छलिया नहीं कह सकते। लौकिक सज्जनता तो उन लोगों में होती ही है, लेकिन वो बेचारे खुद ही अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, के पहले आत्मा का स्वरूप आगम से और युक्ति से और गुरु के उपदेश से बिल्कुल सही समझना, और फिर तुम चौथे में जाओगे ना तो एकदम सही अनुभूति होगी, इनमें कहीं गलती रह गई तो वहां तुम गरुड़ के ध्यान और भैंसा के ध्यान जैसे हो जाओगे इस समय। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये निर्णय तीन में, इसलिए आचार्य ने लिखा ना आगम के सेवन के से युक्ति के अवलंबन से और परंपरा गुरु के उपदेश से और फिर आत्मा के अनुभव से, वो चौथा छेद है भाई साहब। और इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं ना, दिए थे 8-10 दिन पहले यहां, कभी मैंने दिया था ना कि टोडम स्मारक के बारे में जो मैंने खानिया चर्चा की भूमिका में पढ़ा था और जैसा चित्र मेरे दिमाग में बना था, जब मैं आया तो मुझे वैसा देखने को नहीं मिला। क्या तो इसका मतलब वो निरूपण सही नहीं था, वो वैसा उसके अजीब करीब तो आता। ऐसे ही दिनागम से पढ़कर, युक्ति से सोचकर, परंपरा गुरु के उपदेश से सुनकर आत्मा आपको इतना क्लियर होना चाहिए, कितना इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आपको आत्मा की अनुभूति हो तो लगे कि हाँ ऐसा ही मैंने आगम पढ़ के समझा था, यही देखा, बिल्कुल यही चीज थी, तो समझ लो तो होगा तुम्हारा काम, वो तो बाद में पता लगेगा। आज कौन बता रहा था कि अनुभूति दो तरह की होती है, परीक्षानुभूति और एक प्रत्यक्षानुभूति। कहते चल रही थी कहा नए चक्र में, संजीव गोधा बता रहे थे, मैंने सुना था उसे। तो ये परोक्षानुभूति है, कैलाश जी कौन सी है परोक्षानुभूति, कि आगम से, युक्ति से और परंपरा गुरु के उपदेश से वो आत्मा का बिल्कुल सही स्वरूप ख्याल में आ गया तो उसको हम कहेंगे परोक्षानुभूति। फिर वो ऐसा ध्यान करेगा, ऐसा उपयोग जाएगा, जाएगा ही करेगा नहीं होगा, तो उसको भगवान आत्मा वैसा ही दिखेगा। समझ में आए ना, तुलसीदास जी को एक आदत है, वो मुरली वाले दिख गए होंगे क्योंकि उनको बीच बीच में मुरली का भी जोर चलता था ना, तो उनके दिमाग के उपयोग में वो मुरली वाला भगवान ख्याल में आया होगा, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं कहा, जाओ 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 तुम जाओ, यद्यपि तुम बहुत अच्छे लगते हो पर तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, यदि तुम्हारा उपयोग ऐसा चला जाए और कहीं एकदम सफेद सफेद ऐसा बढ़िया ऐसा दिखे तो तुम इनकार कर देना कि नहीं 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 आगम में तो बिल्कुल अरूपी लिखा था, ये तो रूप दिख गया। क्या समझ में आए ना, तो इसलिए वो अमार्ग क्यों है राजचंद जी साहब, क्योंकि गलत लेन पे चढ़ गए तो दर्शन तो तुम्हें हो जाएंगे लेकिन जैसा भगवान आत्मा है वैसे दर्शन नहीं होंगे और कोई दूसरे रूप में हो जाएंगे और दूसरे रूप में होंगे तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन, कि दर्शन तो हुए लेकिन वो दर्शन तुम्हारा मिथ्या हो गया, ये बात इसमें सिद्ध हो गई। अब मैं कल छंद पढ़ के और 5-10 मिनट में निपटा कर फिर अगली गाथाओं पे जाऊंगा।